वह भी ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो केवल पेट्रोल भरते हैं और एक कदम भी नहीं चलते तो एक भी माला जप नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, खा रहे हैं उतना ही, भक्तों से कम नहीं खा रहे हैं, खाते हैं सोते हैं फिर भी भजन नहीं कर रहे हैं। केवल खाने सुने के लिए जन्म मिला है, ऐसा तो पशु भी कर सकते हैं, करते ही रहते हैं बेचारे, आहार निद्रा भय मैथुन। हम लोगों को मनुष्य जीवन मिला है अपनी चेतना को रिफाइन करने के लिए, और ये भोगों से मुक्त होकर भगवान का जप करना, कथा सुनना, पाठ करना, दर्शन करना, जैसे प्रभुपाद ने प्रोसेस दिया है बहुत सुंदर, इस तरह से चेतना की शुद्धि होगी, भगवान में मन लगेगा। गृहस्थ आश्रम में भी मनु महाराज के विषय में वर्णन है कि अपना मन्वंतर पूरा कर दिया उन्होंने भगवान की कथा सुनने में, तृतीय स्कंध में लिखा गया। इतने बड़े काल को उन्होंने किस तरह से पूरा किया, भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग से पूरा किया। हम लोगों का भी जोड़ा जाएगा कि इस व्यक्ति ने जप में और कथा आदि में भगवान की पूजा में कितना समय दिया, सब कैलकुलेशन होता जाता है, हम लोगों को पता नहीं, लेकिन वो अपने आप सब निकलेगा जीवन के अंत में, रिकॉर्ड निकलेगा कि कितना देर भगवान के भजन में रहा, कितना देर अन्य विचारों में रहा। शिव मैत्रेय जी कहते हैं तृतीय स्कंध में कि मनवंतर पूरा किया मनु महाराज ने भगवान की कथा में, अर्थात उनके जीवन में देखा जाए कि सबसे ज्यादा समय किस में बिताए, तो भगवान श्री कृष्ण की कथा कीर्तन में बिताए, गृहस्थ होते हुए भी, इसीलिए तो अंत में सब छोड़ करके भगवान के भजन में और लग गए। गृहस्थ आश्रम में ही ट्रेनिंग की आवश्यकता है, इसलिए प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत ही सुंदर है रीति मिली है, प्रोसेस मिला है, और आप सब लोग वास्तव में धन्य है, भाग्य है कि इस काम से संबंध है, भगवान के भजन की विधाएं मालूम है, खास करके भगवान के नाम का जप करना, कथा सुनना, पढ़ना, इस तरह से जो बड़े बड़े लोगों ने किया है, मनु महाराज ने किया है, उन्हीं के चरण चिन्ह पर चल करके हम लोग कृष्ण को पा सकते हैं, और उसी परंपरा की यह एक वस्तु है श्रीमद् भागवतम सुनना। तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग सुनने के लिए इस तरह से जुटते हैं, आयोजन करते हैं। चूंकि मनु महाराज की स्तुति लंबी है और बड़ा ही गंभीर भाव है, इसलिए मैं उसको आज नहीं ले रहा हूँ, मैं कल उसे पूरा करूँगा, और परसों से गजेंद्र मोक्ष की कथा प्रारंभ होगी। हरे कृष्ण।
श्री राधा गोविंद जी महाराज जो हमारे बीच में आए हैं, उनके लिए हमें नवदीप धाम मंदिर की ओर से, न्यू नवदीप धाम मंदिर ओर से बहुत बहुत आभारी हूं। उन्होंने बहुत ही उत्तम कथा का हमें रसास्वादन कराया इतने सुमधुर ढंग से कि हम उसे सदैव सदैव के याद रखेंगे। वास्तव में 2 घंटे कुछ ऐसे लगे ही नहीं कि 2 घंटा समय व्यतीत हो चुका है। तो ये कथा भी 7 दिनों तक के लिए और है अभी।
मते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमनुरुवाच येन चेतयते विश्वाम् विश्वं चेतयते नयाम् यो जागर्ति शयानस्मिन् नायं तं वेद वेदसः आत्मा वाश्यमिदं विश्वाम् यत्किञ्चि जगत्यां जगात् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विद्धनाम्। यं न पश्यति पश्यन्ताम् चक्षुर्जस्य नरिष्यति तं भूतनिलयं देवां सुपर्णमुपधावत न जस्याद्यन्तौ मध्यं च स्वः परो नान्तरं बहिः विश्वस्यामो निजद्यस्मात् विश्वं च तद्रितं महात् स विश्वकायः पुरुहूतैषः सत्यः स्वयं ज्योतिरजः परेशः पुराण धत्ते स जन्मादयात्मसत्या तां विद्ययोदस्य निरीहयास्ते अथाग्रे ऋषयः कर्माणि इहन्ते कर्म हेतवे इह मानो हि पुरुषः प्रायो नीहां प्रपद्यते ईहते भगवानीश नहि तत्र विसज्जते। आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावशीदन्ति येन ताम् तमीहमानं निरहंकृतं बुधाम् निराशिषं पूर्णमनन्यचोदितम् नृंशिक्षयन्तं निजवात्मसंस्थितम् प्रभुं प्रपद्येऽखिलधर्मभावनम्। येन चेतयते विश्वं विश्वं
जप करने लगे
येना
जिसके द्वारा
चेतयते
चेतनी भवती चेतना प्राप्त करता है
विश्वाम
विश्व
विश्वाम
परंतु विश्व
चेतयते
चेतन नहीं कर पाता है
ना
ना
याम
जिनको
यह
जो
जागृति
जागता है साक्षी के रूप में वर्तमान रहता है
शयानेस्मिन्
इस विश्व के सोने पर ना ना आयाम यह विश्व ताम उसको वेदा जानता है वेदा परंतु जानता है सह आरती का काम इस समय नहीं करना चाहिए माता जी सारा काम बंद कल कथा आई थी श्री मनु महाराज सुनंदा नदी के तट पर अंगूठे के बल खड़े होकर और उपनिषद का मंत्र जपने लगे कई प्रकार के जप्य स्तोत्र होते हैं किसी किसी में केवल भगवान का नाम होता है नाम की आवृत्ति होती है किसी में भगवान के केवल गुण होते हैं किसी में मिश्रित होते हैं कई ऐसी प्रार्थना है जिसमें अपना दैन्य व्यक्त किया जाता है अपनी दीनता जैसे नरोत्तम दास ठाकुर की कविता में है हरि हरि विफल जन्म गवाए अपनी दीनता व्यक्त की जाती है इसकी भी आवृत्ति की जाती है और जैसे नाम कीर्तन निरंतर जैसे महामंत्र का जप किया जाता है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 तो भगवान के नाम में गुण छिपे रहते हैं और गुणों में भगवान का नाम छिपा रहता है ध्यान रखना चाहिए हरे कृष्ण और राम में भी भगवान के अनंत गुण है इसकी व्याख्या किया है आचार्यों ने जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी भी व्याख्या किए और बहुत से कृष्ण शब्द ही भगवान के अनंत गुणों को समेटे हुए है कृष्ण का अर्थ है कर्षति इति कृष्ण जो सबको अपने तरफ आकृष्ट कर ले तो आकृष्ट करने में तो सारे गुण होना ही पड़ेगा तभी तो आकृष्ट करेगा तो भगवान के सारे गुण इसमें सन्निहित पर कभी कभी जप होता है जिसमें भगवान के नाम आते हैं ज्यादा जैसे नारायण कवच में और इस संदर्भ में जो भगवान का बहुत ही सुंदर स्तोत्र आएगा गजेंद्र जी के मुख से उसमें भगवान के गुण आए हैं और गुणों में नाम है नाम में गुण है भगवान के नाम में गुण में रूप में कोई भेद नहीं होता है उनके सिर विग्रह में तो यहाँ पर मनु महाराज जो जप कर रहे हैं उपनिषदों का मंत्र इसमें भगवान का गुण व्यक्त किया गया आप देखेंगे तो सोचेंगे अरे इसमें भगवान का कोई नाम नहीं आया लेकिन बिना नाम के तो वह व्यक्ति है नहीं भगवान के गुण व्यक्त किए जा रहे हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे संकीर्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं कि भगवान का कोई नाम रख दीजिए तो समझते हैं कि ये सेक्टेरियन बात इसीलिए भगवान के गुणों को कहना चाहिए तब लोग सोचते हैं हाँ ये ठीक है भगवान के गुण कह रहे हैं ऐसा देखा जाता है समाज में तो भगवान के गुणों को कहा जा रहा है आप इधर बैठे शिवरात प्रभु जी आप अपने गुरु भाई के बगल में बैठिए मनु महाराज खड़े होकर और ये जप कर रहे हैं आगे यह वर्णन आएगा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इसका वे निरंतर उच्चारण कर रहे थे जप कर रहे थे जेन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते न यम यो जागर्त सयानस्मिन् नायम तम वेद वेद सह जेन चिदात्मना विश्वम चेतयते चेतनी भवती भगवान है चिद वस्तु है नख से सिक तक पूर्ण चेतन वस्तु चिन्ह भगवता चिदात्मना विश्वम चेतनी भवती चेतयत। संसार में इस प्राकृत जगत में किसी में भी अपनी कोई चेतना नहीं है, तो भगवान से यह सारा विश्व चेतनी भूत होता है, उनसे चेतना आती है। जैसे यदि सूर्य न उगे इस संसार में तो संसार के किसी वस्तु में कोई प्रकाश नहीं है, पत्थर में या मिट्टी में, वृक्ष में, मनुष्य के शरीर में या पशुओं के शरीर में या घर में कोई लाइट नहीं है, विद्युत को भी इलेक्ट्रिक को भी बंद कर दिया जाए तो कोई प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश सूर्य से आता है, अग्नि से आता है, तब जाकर के यह जगत प्रकाशित होता है, दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार जगत में जो जड़ वस्तुएं हैं, किसी का शरीर है या पंच महाभूत, इसमें कोई चेतना नहीं है, पर भगवान की चेतना से चेतनी भूत होते हैं। सबके हृदय में भी भगवान स्थित है परमात्मा के रूप में, इसी से शरीर चेतना प्राप्त करता है और मन चेतना प्राप्त करता है। मन अपने आप में जड़ वस्तु, उसमें अपनी कोई चेतना नहीं है, भगवान हृदय में होते हैं, तो इसलिए मन या अहंकार या बुद्धि चेतना चेतनी भूत हो जाते हैं। इसको हम लोग एक बार विचार कर रहे थे, जा रहे थे रोड में शाम को, कहीं प्रोग्राम में जा रहे थे, ब्रज भक्ति प्रभु थे साथ में, हम लोग रोड पर देखते जा रहे थे और दोनों तरफ तथा रोड के बीच में भी शाइनर कुछ होते हैं, चमकते हैं, उसमें कुछ पेंट लगा होता है, लाल या पीला या उजला, तो डिवाइडर होते हैं, कहीं साइन बताते हैं तो चमकते हैं। कब चमकते हैं, उनमें अपनी चमक नहीं होती है, जो लाइट पड़ती है उस पर तो चमकने लगते हैं। हम लोग देखते थे कि लाइट जब ही समाप्त होता था तो वो इधर से कुछ भी अंधकार में दिखाई नहीं देता, परंतु कार की लाइट पड़ती है तो चमकने लगते हैं। तो कोई सोच सकता है कि यह इनकी अपनी चमक है, अपनी चमक नहीं है, यदि उसके पास प्रकाश न जाए तो नहीं चमकेगा। ऐसा हम लोग प्रयोग कर कर देखे, नहीं चमक रहा था। तो जो वह वस्तु है वह तो मान लीजिए शरीर जैसा है, लेकिन उसमें जो चमकने की शक्ति है वो मन जैसा है सूक्ष्म। तो स्थूल शरीर तो चेतनी भूत हो ही रहा है, हाथ काम करता है, पैर काम करता है, स्थूल शरीर में चेतना आ रही है, ग्रॉस बॉडी में चेतना आ रही है, कहां से? मन पर प्रतिफलित होकर के वो चेतना आ रही है स्थूल शरीर में। और भगवान की चेतना सबसे पहले मन को चेतनी भूत करती है, मन चेतन होता है, अहंकार चेतन होता है, और उससे फिर यह जड़ शरीर भी चेतनीभूत होता है। वह भी जड़ है लेकिन सूक्ष्म है, इसीलिए उसको सटल बॉडी कहते हैं, सूक्ष्म बॉडी कहते हैं। तो इस प्रकार सारा जगत जड़ है, चेतनाहीन है, लेकिन एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सबको चेतना देते हैं। यह रट रहे हैं मनु महाराज, जेन चेतयते विश्वम। विश्वम शब्द से संपूर्ण जीवों के विषय में कह रहे हैं, वस्तुओं के विषय में, यह पृथ्वी या सारा लोक लोकांतर में जो चेतना है वो भगवान की दी हुई है। पृथ्वी में भी चेतना है, यदि चेतना न रहे तो पृथ्वी में एक भी अंकुर नहीं उग सकता है। श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि शरीर में आत्मा है या परमात्मा भगवान है, तो शरीर में बहुत सी चीजें बढ़ती रहती हैं, जैसे नख बढ़ता है, केश बढ़ता है और शरीर भी बढ़ता है कुछ काल तक, परंतु जैव ही आत्मा शरीर को छोड़ देता है या परमात्मा शरीर को छोड़ देता है तो शरीर में अब नख नहीं बढ़ सकता है, केश नहीं बढ़ सकता, सब जैव का तेल ठप हो जाता है।
इसी तरह पृथ्वी में भगवान प्रविष्ट है, ऐसा 15वें अध्याय गीता में कहते हैं, गामा अविश्य च भूतानि, गाम आविश्य, आविश्य का प्रवेश करके, मैं पृथ्वी में प्रवेश करके सभी जीवों को धारण कर रहा हूं, भगवान पृथ्वी के भीतर है इसलिए पृथ्वी से वृक्ष उग रहा है, वृक्ष में फल लग रहा है, पत्ते लग रहे हैं, पुष्प लग रहे हैं, या कोई तृण बढ़ रहा है, लता बढ़ रही है। यदि भगवान चेतना के रूप में पृथ्वी में प्रवेश न करें तो पृथ्वी एक भी कण अन्न नहीं पैदा कर सकती, कोई जीव कुछ भी खा नहीं सकता है, लकड़ी उत्पन्न नहीं हो सकती कुछ भी। और एक एक प्राणी में, एक एक वस्तु में भगवान प्रविष्ट है। भगवान का यह गुण है, स्वयं तो चिदात्मा है ही, सिर्फ ऐसे उधर स्वामी जी कहते हैं, जेन चिदात्मना भगवता इदम विश्वम चेतायते चेतनी भवती, परंतु विश्वम यमना चेतायते, परंतु सारा विश्व मिलकर भगवान को चेतना नहीं देता है, क्योंकि स्वयं चिद रूपत्वात् रूपत्वात् स्वयं चिन्मय भगवान, उनको कोई क्या चेतना देगा, से इधर से कोई क्या सूरज में प्रकाश भरेगा, बताइए। कभी अकस्मात मान लीजिए, मानने के बाद सपोज सूरज में प्रकाश की कमी होने लगे, तो मनुष्य मीटिंग करके या एजेंडा बना करके कुछ भी क्या करेगा, पूछल रहे भैया सूरज की गर्मी कम होने वाली है, कुछ प्रबंध करो, इधर से कुछ पेट्रोल भेजो, चाहे कुछ भी करो, अब वो क्या कर सकता है। जिन चेतयते विश्वम, विश्वम चेतयते न जम, यह सारा जीव समुदाय भगवान को चेतन नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं ही चिन्मय है, उन्हीं से सारी चेतना बिखर रही है, तो उनमें क्या कोई चेतना भरेगा, भगवान का यह स्वरूप है। कभी कभी मनुष्य भगवान के बारे में विचार करता है तो उनको अपने ही जैसा मान लेता है, आकार होने से, और श्री कृष्ण हमारे जैसे ही हैं, ये हैं, वहां कुछ विलक्षण है, परंतु वास्तव में पूर्ण विलक्षण है, समस्त जीवन से संपूर्ण विश्व भगवान को कुछ दे नहीं सकता है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, सारी दुनिया भिखारी है, भगवान के दिए हुए सब खा रहे हैं, हम क्या दे पाएंगे उनको। विश्वम चेतयते न जम, भगवान को न कोई ज्ञान दे सकता है न कुछ ही। हाँ, यह बात जरूर है कि भगवान की ही दी हुई वस्तु को हम भगवान को देते हैं तो इसको भक्ति मान लिया जाता है और भगवान प्रसन्न होते हैं, वस्तु पा करके नहीं, वस्तु तो भगवान दिए हैं, लेकिन हमारे एटीट्यूड से, हमारी प्रवृत्ति से वो प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए किसी बच्चे के पिता हैं और आप बाजार से कुछ वस्तु खरीद करके लाइए, मिठाई मिठाई या कोई वस्तु अपने बच्चे को दीजिए, और बच्चा यदि यह कहे कि नहीं आप पहले खाइए, तो पिता का हृदय गदगद हो जाता है, केवल बच्चे की इस प्रवृत्ति को देखकर कि यह हमें चाहता है, हमारे प्रति आदर का भाव रखता है। वस्तु तो पिता स्वयं लाया है और अपने लिए नहीं लाया है, बच्चे के लिए ही लाया है, लेकिन बच्चा यदि कह दे कि नहीं पहले आप खाइए, आप खाएंगे तब खाओ, यह हुई भक्ति। भगवान को कोई क्या दे सकता है, परंतु भगवान की दी हुई वस्तु को भगवान को दिया जाता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे इस भाव से प्रसन्न होते हैं, इसमें अच्छी भावना है, यह बेईमान नहीं है। जो नहीं अर्पण करता है भगवान को वो तो अव्वल नंबर का बेईमान आदमी, भगवान का खा करके भगवान की याद नहीं करता है। और भगवान इतने दयालु हैं कि हम जो कुछ अर्पण करते हैं तो ले नहीं लेते हैं, प्रसाद बनाकर दे देते हैं, फिर भी लोग अर्पण नहीं करते। एक बार एक व्यक्ति हमसे तर्क कर रहा था कहता है, वो कहा कि आप लोग इसीलिए भगवान को अर्पण करते हैं कि भगवान खाते नहीं। भगवान जिस दिन खाना चालू करेंगे तो आप लोग अर्पण नहीं करेंगे। मैंने कहा कि यदि भगवान डायरेक्ट खाने लगे तब तो और ज्यादा अर्पण करेंगे। हमारे घर में बच्चे खाते हैं, पत्नी खाती है, तो उसको हम लोग नहीं रोज खिलाते हैं। क्या वो खाते हैं इसलिए नहीं खिलाएंगे? बताइए। वो और आग्रह करके माँ खिलाती है बच्चों को, और खाओ ये खाओ, पत्नी पति को खिलाती है, माँ अपने बच्चों को प्राय खिलाती है, तो भगवान को क्यों नहीं खिलाएंगे? तो मैं पूछा कैसे, ठीक है आप खिलाते हैं कि नहीं? नहीं हम नहीं खिलाते। तो मैंने कहा कि वो जब भगवान लौटा देते हैं तब तो आप खिला ही नहीं रहे हैं, और जब सचमुच खाने लगेंगे तो आप तो बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। तो हाँ हम तो ऐसा करेंगे, जब खाने लगेंगे, जब लौटा देते हैं तब तो दे ही नहीं रहे। तो भगवान ग्रहण करेंगे तो क्या आप लौटाएंगे, लेकिन जो देने वाला है वो तो भगवान खा जाए डायरेक्ट या लौटा जाए वो तो देगा ही, वो स्वभाव की और प्रेम की बात। वास्तव में भगवान को कुछ दिया नहीं जा सकता है, हमारा है क्या, लेकिन भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान को कोई चेतना नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी शास्त्र के अनुसार भगवान में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। एक बार एक साधु अपने पास रखे थे विग्रह, किसी ने पूछा कि प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो क्या भगवान बिना प्राण के हैं क्या, हम प्राण डालेंगे। हम प्राण डालेंगे, भगवान दुनिया में सब में प्राण डालते हैं, अब हम चले उनको प्राण डालने के लिए। तो वे ऐसे कह रहे थे, लेकिन वास्तव में भगवान में प्राण डाला जाता है, भगवान में वो प्राण नहीं डाला जाता है, वास्तव में भगवान को उस पत्थर में डाला जाता है। भगवान बिना प्राण के नहीं है, वो तो घनीभूत चेतन वस्तु है, लेकिन उस चेतन वस्तु को किसी पत्थर में या दारू में लकड़ी में डाला जाता है। इस बात को यदि कोई व्यक्ति न स्वीकार करे तो उसे जगन्नाथ जी की कैसे प्रतिष्ठा होती है इसको सुनना चाहिए। जगन्नाथपुरी में जो भगवान का विग्रह बनता है, कलेवर बदलता है, हमने सुना 12 विलक्षणता, जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वो किस तरह के ब्राह्मण होते हैं, कितनी योग्यता होती है, और भगवान स्वयं ही सपना में बताते हैं राजा को कि ये ब्राह्मण हमारी प्रतिष्ठा करेंगे। 3 ब्राह्मण होते हैं, रात भर खड़े रहते हैं, कैसे कैसे लकड़ी लाई जाती है, उस लकड़ी पर निश्चित उस वृक्ष पर सांप होना चाहिए, उस वृक्ष पर कोई पक्षी बीट न कर किया हो, और वो सब मिल जाता है। अच्छा, जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ब्राह्मण, वे साल भर के अंदर ही शरीर छोड़ देते हैं, यह निश्चित है, और फिर भी वे करते हैं, बहुत गंभीर बात है। तो एक प्रश्न उठा कि जगन्नाथ जी इस तरह शरीर बदलने की लीला क्यों करते हैं, भगवान का तो शरीर शरीर का भेद नहीं है, लेकिन भगवान इस तरह से जगत को सिखाते हैं। वास्तव में कम से कम भगवान आ रहे हैं किसी शरीर में, तो इस बात से लोग ये श्रद्धा करेंगे कि हाँ भगवान आए हैं, भगवान हमारी दी हुई वस्तु को ग्रहण करें। उसको दारू ब्रह्म कहते हैं जगन्नाथ जी को। यद्यपि भगवान में कोई चेतना नहीं दे सकता है, लेकिन फिर भी भाव एक अद्भुत वस्तु है, भाव के भूखे भगवान दौड़े चले जाते हैं, स्वीकार करते हैं। परंतु वास्तव में कोई व्यक्ति यह मन में अभिमान करे कि मैं भगवान को दिया, भगवान को ज्ञान दिया या चेतना दिया, वस्तु दिया, तो यह तो मिथ्या बात। भगवान सबको दे रहे हैं चेतना ज्ञान जो कुछ भी है। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च,
भगवान गीता में कहते हैं मुझसे सबको ज्ञान मिल रहा है, चेतना मिल रही है, विस्मृति मिल रही है। कैसे ऐसे जानते हैं? तब कहते हैं यो जागृति शयान अस्मिन अस्मिन शयान स्वपिति यह जागृति, यह जगत सोता रहता है और भगवान जगते रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सबके ऊपर साक्षी के रूप में भगवान विद्यमान है। गीता में भगवान यह बात कहते हैं बहुत जोर देकर, साक्षी गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरण से मैं साक्षी। साक्षी का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि के ऊपर भगवान की बुद्धि है। छोटा सा बच्चा खेल रहा है, कैसे जन्म लिया, क्या नाम पड़ा, क्या खाया, माँ सब जानती है, लेकिन माँ कब जन्म ली, माँ की क्या विचार है, माँ का क्या क्वालिफिकेशन है, बच्चा नहीं जानता। रहता है उसकी गोद में, लेकिन हो सकता है कि माँ को बिल्कुल नहीं जानता हो, छोटा सा बच्चा, लेकिन माँ सब कुछ जानती है, किस दिन जन्म हुआ, कैसे क्या रहता है। तो भगवान समस्त जीवों के भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, साक्षी हैं। लेकिन नायम तम वेद वेद सह, आश्चर्य है कि अयम यह विश्वस्थित जन समुदाय तम न वेद, भगवान को नहीं जानता है, और सत वेद। देखिए वेद वेद शब्द एक ही बार दो जगह, अयम तो तम न वेद सतु इमम वेद, भगवान सबको जानते हैं लेकिन भगवान को कोई नहीं जानता। यह आश्चर्य है, बहुत चित्रम, आश्चर्य की बात, भगवान को यह जीव नहीं जानता है, भगवान सबको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। गीता में भगवान कहते हैं वेदाहम समुतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि तु भूतानि मां तु वेदन कश्चन। ये अर्जुन, भूत में जो कुछ हो चुका है मैं सब जानता हूं, भविष्य में जो होगा सब जानता हूं, वर्तमान में जो हो रहा है सब जानता हूं, लेकिन माम तो वेदन कश्चन, बस कश्चन अभी माम न वेद, कोई भी मुझे नहीं जानता। एक बार गीता में भगवान कहते हैं कि मैं एक ऐसा उपाय बता रहा हूं कि तुम मुझे पूरा पूरा जान जाओगे, असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास दक्षिण। लेकिन वैसे भगवान के कहने का आशय है कि यदि मैं न बताऊं तो कोई अपने प्रयास से अपने बुद्धि कौशल से मुझे नहीं समझ सकता है, कहने का भाव ये। तो भगवान सबको जन्म दिए हैं, पालन कर रहे हैं, पोष रहे हैं, प्रलय करते हैं, भगवान को कोई नहीं जानता है, और भगवान एक एक व्यक्ति की एक एक सेकेंड की बात को अनादि काल से जानते हैं। कब हम कवर उठाए, कब पलक गिराए, आज से करोड़ों वर्ष पहले किस शरीर में थे, क्या सोच रहे थे, वो सब कुछ भगवान को याद है। लेकिन जीव भगवान को नहीं जानते हैं, भगवान को तो छोड़ दीजिए, अपने को भी नहीं जानते। किसी से पूछा जाए कि इस जन्म के पहले आप कहाँ थे, किस शरीर में थे, और 26 मई को आप क्या कर रहे थे 10 वर्ष पहले, इतने बजे इस मिनट पर, क्या कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। अपने बारे में ही मालूम नहीं है, भगवान के बारे में क्या मालूम होगा। लेकिन वे सबके बारे में सब कुछ जानते। एक बार मैं ऐसे कह रहा था कथा में, तो एक व्यक्ति कहा कि अरे बाप रे, ये सब जो याद रखेगा तो उसका दिमाग फट जाएगा। भगवान कैसे याद रखे, दिमाग कैसे फट जाएगा, छोटे से कंप्यूटर में कितनी बातें भरी होती हैं। एक भक्त बता रहे थे छोटे से डिस्क में प्रभुपाद जी की सारी किताबें भरी, तो उसका दिमाग फट रहा है। साधारण जड़ वस्तु में इतनी इतनी चीजें सन्निहित है, तो फिर भगवान को सारा ज्ञान हुई, कौन आश्चर्य की बात है। अच्छा।
भूत का तो वही भविष्य में जो कुछ भी होगा, अनंत 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 काल तक एक एक जीव क्या खाएगा, कब छींकेगा, क्या शरीर पाएगा, कब घूमेगा, सब भगवान को पता है। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं वैकुंठ में, कहाँ हैं, ब्रह्मा जी उससे किस प्रकार बात कर रहे हैं, कैसे अवतार लेते हैं, कब अवतार लेंगे, क्या कर रहे हैं, कण कण में व्याप्त है, इसको नहीं जानते। पढ़ने के लिए भले प्रार्थना पढ़ दे, नमाज पढ़ दे, लेकिन भगवान का ज्ञान है नहीं। कुछ पूछा जाए, अब तो जनरल पूछिए कि भगवान का क्या रूप है, तो कह दे निराकार, यही है ज्ञान। भगवान की तो चार भुजाएं हैं, चार भुजाओं में आयु धारण किए हैं, उनकी पोशाक है, उनके आभूषण है, उनका स्वभाव है, सब कुछ है। लेकिन भगवान के बारे में पूछिए तो सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि निराकार है, जाओ सारे ज्ञान की तीसरी होगी। पूछ दीजिए भगवान क्या है, भाव अलख निरंजन, उनको लखा नहीं जा सकता, रखा नहीं जा सकता, ये बता दिए तो यही बहुत भारी ज्ञान है। यहां से कोई पूछे कि बताइए न्यूयॉर्क सिटी कैसे जाएंगे, तो रास्ता मालूम हो नहीं सकता है, बस तो ये मान लिया जाएगा परफेक्ट ज्ञान हो। या कोई और कह दे कि अव्यक्त पथ है, आप जान नहीं पाएंगे, आपको पता नहीं लग सकता, इसी को मान लिया जाएगा और कहने लगेगा उस चेला की अव्यक्तम अव्यक्तम अव्यक्तम। ये तो कोई भगवान का वर्णन नहीं हुआ ना, भगवान का पॉजिटिव वर्णन होना चाहिए। अरे उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनके पत्नी का नाम, उनका एड्रेस, उनका टेलीफोन, उनका सब कुछ है ना। जब इसको बताया जाएगा तब पता चलेगा हाँ भगवान का ये पॉजिटिव वर्णन। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया कन्वर्सेशन में, प्रभुपाद जी कुछ बात कर रहे थे तो भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे, मोरपंख धारण किए हैं, वो प्रसिद्ध श्लोक बोल रहे थे, वेणु कोणंत मरबिंद दलायताक्ष। तो प्रभुपाद जी के मुख से निकल गया कि हम लोगों को पूरा पता है कि भगवान का क्या रूप, इसी पर वो व्यक्ति तो पागल हो गया सुनकर, आज तक किसी को पता नहीं है कि भगवान का क्या रूप, आप कैसे कहते हैं कि भगवान को हम लोग जानते हैं, किसी को पता नहीं। तो प्रभुपाद जी बहुत डांटते उसको, कहे तुमको पता नहीं है ना, किसी को पता नहीं, हमको पता है, तो पूछ दे क्या पता है आपको, क्या रूप। प्रभुपाद जी श्लोक बोलते हैं, मैं कैसे सुना हूं, वेणु कोणंत मरबिंद दलायताक्षम बरहावतंस मसितांबुज सुंदरांग। भगवान बांसुरी बजाते हैं, उनका शरीर सांवले बादल के समान है, मोरपंख धारण करते हैं, करोड़ों कामदेव से भी सुंदर हैं, ये है भगवान का रूप, हमको मालूम है और किसी को भी मालूम हो सकता है। ये तो आपका विश्वास है, देखिए भगवान का रूप, प्रभुपाद जी कहते मेरा विश्वास नहीं है, ब्रह्मा जी का वर्णन है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मेरा विश्वास, मैं विश्वास करूं या ना करूं, भगवान का यह रूप ब्रह्मा जी कहते हैं, ये कहते हैं। प्रभुपाद जी इतना दृढ़ रूप से वर्णन कर रहे, वास्तव में भगवान का रूप है, भगवान की लीलाएं हैं और भगवान का स्वभाव है। स्वभाव के विषय में मान लीजिए पूछा जाए कि जो व्यक्ति भगवान की शरण लेता है तो भगवान उसका आदर करते हैं या उसे मारते हैं, दूर दूर आते हैं, क्या स्वभाव है भगवान का। आज मनुष्यों के यहाँ आप देखिए सबका एक स्वभाव नहीं है, आप किसी के घर पर जाइए तो आदमी सीधे कहे गेट आउट, यहाँ क्यों आ गए, कहेगा ना। कुछ ऐसे मनुष्य लिखे रहते हैं नो एडमिशन, लेकिन भगवान के घर पर कहीं भी वैकुंठ में ये नहीं लिखा हुआ। एक बार उनके दूतों ने नो एडमिशन कह दिया तो उनको यहाँ आना पड़ा। जय विजय को। भगवान का द्वार खुला है, चार छोटे छोटे बच्चे चले गए वहां घूमते,
शनकादिक,
चाहे इनका जो भी पोजीशन हो, लेकिन बाह्य रूप से तो छोटे छोटे नग्न बच्चे थे, घूमते हुए चले गए, भगवान के यहां पहुंच गए। लेकिन यहां पर साधारण आदमी के द्वार पर वॉचमैन होगा, वॉच डॉग होगा, और ये होगा, बहुत बहुत रिस्ट्रिक्शन, इसे भेंट नहीं कर सकते, ये तो स्वभाव। पहले पूछा जाए कौन है, क्या है, क्यों आ रहा है, ऐसे आ रहा है, कोई कह दे कि आपकी शरण में आ रहा है, तो कहे भगाओ भगाओ, शरण में क्या जरूरत है, शरण में आ रहा है। तो ये तो जीव का स्वरूप है, लेकिन भगवान का स्वरूप ये है कि कोई भगवान की शरण में आ रहे तो भगवान उसे अपना लेते हैं, बहुत कृपा करते हैं। ये प्रसिद्ध घटना है, विभीषण जी रावण को समझा रहे थे, सीता जी को लौटा दो, अभी भी प्रभु क्षमा कर देंगे, क्षमा करने लायक कार्य नहीं है, सीता का अपहरण ही अपने आप में बहुत बड़ा दुष्कर्म है, जिसके कारण तुमको दंड मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी श्री राम बहुत कृपालु हैं, सीता को लौटा दोगे तो दंड नहीं देंगे, बार बार समझा रहे थे। इस पर रावण उनको लात मारा और कहा कि ये नीति जाकर उसी को सिखाओ, हमको मत सिखाओ, ऐसे क्रोध में बोला। तो विभीषण जी लंका छोड़ करके चले आए समुद्र के पार, उस तरफ विमान से, तो आए पृथ्वी पर उतरे, बहुत दूर थे, तब तक वानरों में भी कुछ खुफिया रखे गए थे, सेना में तो व्यवस्था होनी चाहिए ना, सेना में सब प्रवेश न कर जाए। कुछ वानरों ने आकर के भगवान से कहा कि आवा मिलन दशानन भाई, दशानन का भाई आपसे मिलने के लिए आया, वही उसी रावण का भाई आया है जो रावण आपकी पत्नी को चुरा ले गया, उसका भाई आपसे मिलने आया। तो भगवान बिल्कुल ही सीधे साधे शब्दों में कह पूछे सुग्रीव जी से और लोगों से, तब क्या करना चाहिए, पहले ऐसे तटस्थ भाव से पूछ, तो अपनी अपनी बात सब कहने लगे। सुग्रीव जी ने कहा कि निश्चित ही वो हमारा भेद लेने आया होगा, तो रावण का भाई इतना सुनते ही सुग्रीव जी तो अपने भाई जैसा समझ रहे थे, बाली जैसा है, उस राजनीति में वो रह चुके थे, तो कहे कि वो निश्चित हमारा भेद लेने के लिए आया होगा, और बांधिए ताही मोही अस्भाव, उसको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाए, यही बांध लिया जाए, फिर यहाँ से लौट कर लंका में न जाए, लंका में जाएगा तो हमारा भेद देगा, उसको बांधा जाए। कोई कह रहे थे कि नहीं नहीं, बांधने से काम नहीं चलेगा, उसका अंग भंग किया जाए, हाथ काट लीजिए या कुछ कर लीजिए, रावण का भाई है, उसको मारना चाहिए, पीटना चाहिए। परंतु हनुमान जी चुप थे, और हनुमान जी जानते थे कि वह तो डिवोटी बन चुका है, वो तो भक्त हो गया है, हनुमान जी जाकर दीक्षा दिए थे लंका में, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, मंत्र का अर्थ है उपदेश, हनुमान जी के उपदेश को स्वीकार किए, तो विभीषण जी पहले से ही भक्त थे, हनुमान जी की कृपा से और हो गए, तो हनुमान जी तो जानते थे कि सच्चे हृदय से शरण में आ रहे हैं, और इधर वानर सब अपनी अपनी राजनीति दिखा रहे थे, कोई कह रहे थे ऐसे करना चाहिए, कोई कहता ऐसे करना चाहिए, तो भगवान कहे कि ठीक है, लेकिन पता तो लगाइए कि वो किस भाव से आ रहा है, हमारा भेद लेने आया है, शत्रु भाव से आया है, तो कोई चिंता की बात नहीं, जगमह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हन ही निमिष महते, जितने राक्षस हैं इस जगत में लक्ष्मण आधे निमिष में सबको मार सकते हैं, उसकी चिंता हमको नहीं, भेद लेने आया है या द्रोह करने आया है इसकी चिंता नहीं, लेकिन कहीं भयभीत होकर मेरी शरण में आया होगा तब तो मैं उसे प्राण की तरह रखूं। इतना सुनते ही हनुमान जी जोर से जय बोले, जय श्री राम, बहुत जोर से बोले, गदगद हो गए सुन करके, तो सब वानर गए और गए जाकर परीक्षण किए, देखे तो समझ गए
ये भक्त हैं, शुद्ध भाव शरण में आ रहे हैं तो आए
रख
शरण में। तो यह है भगवान का स्वभाव। ऐसा नहीं कि भगवान इधर से लगा दे किसी को कि नहीं तुम उसको लौटा तो हमसे बात करने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा आदमी हो कोई हमारी शरण में आ रहा है तो बात भी नहीं करेंगे, बात भी नहीं करेंगे। किसका फोन आ रहा है हम नहीं उठाएंगे, दूसरे से पूछें किसका फोन है बंद करो, नहीं सुनेंगे। भगवान शायद ऐसा नहीं करेंगे, भगवान तो एक बार सुन ही लेंगे कि भाई क्या कहना है। तो छोटे छोटे आदमी की यह दशा है, यह स्वभाव है। तो अपने ही स्वभाव से कोई भगवान के स्वभाव का मिलान न कर ले, भगवान जीवों से विलक्षण। मैं यह बात कह रहा था इसकी व्याख्या में इधर बढ़ गया कि भगवान सबके विषय में जानते हैं सब कुछ, लेकिन जीव भगवान को नहीं जानता। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है, और आश्चर्य के साथ साथ यह दुख की बात है, खेद है जीव को ज्ञान नहीं है ऐसे उपकारी भगवान। अब भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए, ईश्वरत्व का वर्णन करते हुए लोगों के हित का उपदेश कर रहे हैं दूसरे श्लोक। आत्मा वाश्यमिदं विश्वं यत्किंचि जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता आग्रधः कस्य स्विद्धनम्। आत्मना ईश्वरेण आवास्यम संव्याप्यम इदं विश्वं। में निवास करते हैं, बसते हैं, वह जगत निवास। ईशोपनिषद में थोड़ा सा अंतर से यह श्लोक है, ईशा वाश्यमिदं विश्व, आत्मा वाश्यमिदं विश्व। ईश के जगह आत्मा शब्द दिया गया है, तो आत्मना ईश्वरेण आवास्यम संव्याप्यम इदं विश्व, अथवा ईशावास्यम ईश्वरेण ईशेन आवास्यम संव्यापम इदं विश्व। जो ईश्वर इस जगत का निर्माण किए हैं, इस जगत के कणकण में हैं, ऐसा नहीं है कि इसकी सृष्टि करके और वे वैकुंठ में हैं, इससे उनको कोई मतलब नहीं। भगवान ऐसे नहीं, इस विश्व के साथ भगवान का बहुत इंटीमेट संबंध है, गहरा संबंध है, एक एक वस्तु के भीतर। जो अंडांत रस्त में, ब्रह्मांड में है, परमाणु में है, सब जगह क्यों है, जब संबंध है तब तो है। एक एक जीव के साथ है, उसको स्मृति देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, तो भगवान के साथ जीव का संबंध है तब तो। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत घर बनाया हो और सब जगह हो रह रहा हो। बहुत जगह रहने की बात तो छोड़ दीजिए, एक ही फ्लैट में वो एक ही फ्लैट में सभी घरों में तो रह नहीं पाएगा, एक जगह रहता है। लेकिन श्रीधर स्वामी जी कहते हैं सत्ता चैतन्य अभियान, सत्ता और चैतन्य के द्वारा। सत्ता का अर्थ है डायरेक्ट उपस्थिति, और चैतन्य का अर्थ है अपनी चेतना द्वारा सर्वत्र व्याप्त है। कहीं कहीं वे डायरेक्ट स्थित हैं और कहीं कहीं उनकी चेतना स्थित है। जैसे सूर्य, सूर्य एक जगह पर स्थित है परंतु उसका प्रकाश बहुत जगह व्याप्त है। तो भगवान कहीं कहीं अपनी चेतना से व्याप्त है जगत में, और कहीं कहीं डायरेक्ट है, जीवों के साथ में डायरेक्ट है। द्वासुपर्णा सहजा सखाया, हम सबके हृदय में भगवान है। यदि पूछा जाए कि जीव का सबसे निकटतम बंधु, सबसे निकटतम संबंधी कौन है, तो वो है श्री कृष्ण, बहुत निकट। पत्नी दूर रह सकती है कुछ दिन, बच्चे दूर हो जाते हैं और सारे संबंधी दूर हो जाते हैं, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। रामचरितमानस में लिखा गया जीव ईश यो सहज संघाती। रा और म के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं राय और म दोनों साथ साथ रहते हैं, ये जीव और ईश्वर की तरह नित्य संघाती। राम नाम के विषय में लिखते सहज संघात,
और संबंध बाद में होता है, बच्चे बाद में उत्पन्न होते हैं, बाद में कोई पत्नी बनती है, बाद में भाई से संबंध होता है जन्म लेने पर, या विवाह के संबंध द्वारा और संबंध मिलते हैं, लेकिन भगवान तो अनादिकाल से साथ में है। और वो भी कहां है, जहां जीव रहता है वहां है, हृदय में है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय से यहां भगवान साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं कि जीव हृदय में रहे और भगवान पैर में रहते, हाथ में रहा, बिल्कुल साथ में हृदय से। इतना स्नेह है भगवान का इसके प्रति, लेकिन ये दुष्ट इतना पागल है, भगवान पर ध्यान नहीं देता। यह भगवान की करुणा है कि जगत के कणकण में व्याप्त है। सीए राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ जो पाए। वास्तव में इसी से बहुत नम्र रहना चाहिए, कणकण में सब जगह भगवान को देखना चाहिए। भगवान में और जीव में भेद है, परंतु उच्च बुद्धि वाले जीव नहीं देखते, वो भगवान को देखते हैं। जीव है, जीव को अलग करके वे देखते हैं, जीव को ही भगवान के रूप में नहीं देखते, लेकिन भगवान की व्यापकता को वे सब जगह अनुभव करते हैं। यह आध्यात्मिक जीवन की एक बहुत बड़ी ऊंचाई है। हम लोग किसी को देखते हैं तो उसके मेटेरियल विशेषता की याद करते हैं, कौन व्यक्ति है, कौन है, कैसा है, ये जीव है, वो आदमी है, वो ऐसा है। लेकिन उच्च दृष्टि वाले लोग सबके भीतर प्रथम बार तो भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान सबके भीतर अवस्थित। जैसे ये वर्णन आया है भागवत में रंती देव महाराज के, 48 दिन भूखे रह गए थे, पानी भी नहीं पिए थे, और उनको जब भोजन मिला पूरे परिवार के साथ, वे बहुत दुखी थे, भूखे थे, भोजन मिला और उस समय एक ब्राह्मण आए भोजन की आकांक्षा से, तो महाराज रंती देव ब्राह्मण को खिला दिए, वे तृप्त हो गए। क्यों खिलाए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हरिम सर्वत्र संपश्य, सर्वत्र श्री कृष्ण को देख रहे थे, उस ब्राह्मण के भीतर भी भगवान को देखे, तो भगवान को उन्होंने अर्पण किया। तो इसके बाद एक शूद्र आया, पुलकस आया, चंडाल आया, चार और आए, सब में भगवान को देख रहे थे, और पानी जो बचा था थोड़ा सा वो भी दे दिए, सब कुछ दे दिए। 48 दिन भूखा रहने के बाद खाने और पीने को थोड़ा सामान मिला था, और कोई आकर के मांगा दीन आदमी, तो रंती देव महाराज दे दिए उसको। उपस्थित थे, खाने जा रहे थे अपने बच्चे के साथ, पत्नी के साथ, तो खाने के लिए बैठे थे। क्या हालत हो रही होगी जरा विचार कीजिए, 48 दिन भूखा प्यासा रह करके उस दशा में वो दे दी, और दे करके कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे योग की 8 सिद्धियां नहीं चाहता हूं, मैं मोक्ष नहीं चाहता हूं, मैं स्वर्गीय लोक आदि का भोग नहीं चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं कि मैं सभी प्राणियों के भीतर रह सकूं, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, जितने प्राणी हैं उनके भीतर मैं रहूं, और उनको जो दुख होने वाला है मैं अकेले भोग जाऊं, मैं सबका दुख भोगूं, यह मुझे शक्ति दीजिए। यही प्रार्थना है, अमर वाणी महाराज रंती देव की भागवत में दी गई दो श्लोकों में, और कहते हैं मैंने यह जल दे दिया, जीवन की लालसा रखने वाले इस व्यक्ति को, तो मेरी भूख चली गई, मेरी प्यास चली गई, मेरी थकावट चली गई, मेरे जीवन में आनंद छा गया। वो पानी दे करके ऐसा कहते हैं, और उसी समय भगवान प्रकट हुए उनके सामने। तो चारों ईश्वर थे, ब्रह्मा जी, भगवान और शिव जी तथा इंद्रदेव, विचार परीक्षा ले रहे थे इनके। भगवान को सर्वत्र देख करके उन्होंने अर्पित कर दिया, ये नहीं देखे ये अछूत व्यक्ति है, यह है, यह है, ये है, जो इस प्रकार की दैहिक दृष्टि होती है जीवों की, ये बहुत छोटी दृष्टि है। उच्च दृष्टि है सब में भगवान को देखना, और इस तरह से जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। चैतन्य चरितार्थ में कहा गया है जीवों को सम्मान देना चाहिए यह जानकर के कि कृष्ण का अधिष्ठान है। ईशावास्यमिदं सर्व, अधिष्ठान का अर्थ होता है जहां अधिकार पूर्वक कोई रहे टीके। जैसे यह घर है, कहा जाएगा भगवान का अधिष्ठान। या अपने किसी का घर है तो कहा जाएगा घर हमारा अधिष्ठान है, और उसमें जो रहता है उसको अधिष्ठात्री कहते। अपने अपने घर के सब अधिष्ठात्री और घर अधिष्ठान है, तो जीव सब अधिष्ठान है और भगवान अधिष्ठित है, अधिष्ठात्री। तो भगवान को देखना चाहिए न कि घर को देखना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी से मिलने जाए और केवल घर की लंबाई चौड़ाई देखना ठीक है, और घर में रहने वाले से भेंट ही नहीं कर, तो कैसा होगा? यह उच्च दृष्टि है कि उस घर में रहने वाले से प्रेम करना। कहीं भी कनेक्शन जोड़ते, मान लिया फोन कर रहे हैं, तो उस घर में फोन नहीं कर रहे हैं, उस घर वाले के पास फोन कर रहे हैं। और घर वाला यदि घर बंद करके गया हो तो घंटी होती रहेगी, बस आंसरिंग मशीन बोलती रहेगी, जाओ। जब वो आता है कहीं से छुट्टी पर से, तब देखता है कि कौन कौन लोग फोन किए, तो वो बोलता है। तो इस जड़ शरीर में वास्तव में भगवान है, और जीव भगवान का ही एक अंश है, अंशी नहीं है। तो जीव को भी यदि आपने सम्मान दिया तो वह सम्मान भी भगवान को जाएगा, लेकिन जीव को भगवान मान करके सम्मान नहीं देना चाहिए। जीव को भगवान का अंश मान करके उसको सुख देना, से प्रेम करना, कि भगवान का अंश है इसलिए हमारा प्रिय हुआ, भगवान के नाते से हमारा भाई हुआ। मैंने अंग्रेजी में बहुत अच्छा शब्द पाया। एक दिन मैं हरिद्वार में प्रवचन कर रहा था, तो भागवत कथा में लोकनाथ महाराज ने कह दिया कि यहाँ पर 1915 वो सार्वभौम जी का भक्त है, 15 गुरुओं के शिष्य आए हुए उस कथा में आए, मतलब इस्कान के सभी 15 गुरुओं के शिष्य आए। किसी ने हमसे कह दिया कि हमारे गुरु भाई आए हैं इतने, हमारे गुरु भाई आए हैं। एक व्यक्ति हमसे कहा, तो मैं कह दिया कि ये तो सब तो आपके गुरु भाई ही हुए, जितने लोग आए हैं सब तो गुरु भाई ही हैं, आप कुछ ही लोगों को क्यों कह रहे हैं गुरु भाई? तब बातचीत होने लगे, तो मुझे स्मरण आ गया कि अंग्रेजी में गुरु ब्रदर नहीं कहते हैं, गॉड ब्रदर। ये बहुत उदार दृष्टि है, गॉड ब्रदर, बल्कि हिंदी में उसका रूप बिगड़ जाता है। अंग्रेजी को धन्यवाद है कि ये गॉड ब्रदर है, भगवान के नाते हम सब लोग भाई हैं, और यही वास्तव में असली धरातल है। और जो धरातल है वो गड़बड़ है, वो ठीक नहीं है। जहां हमें रहना चाहिए वो धरातल ही है कि हम लोग गॉड ब्रदर, सभी जीव कृष्ण के अंश हैं और हम भी उनके अंश हैं, इसलिए सभी भाई हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे, हमारे देश में लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, प्रभुपाद जी कहते थे भाई भाई कहते हैं लेकिन किस धरातल पर? भाई तब होंगे ना जबकि पिता एक होगा, तो पिता का पता ही नहीं है भाई कैसे होगा। भाई पिता जब स्वीकार करोगे एक, तब ना सब भाई बनोगे। वो कह रहे हमारा पिता एक और है, हमारा पिता वो है, तो हमारा पिता वो है, तो भाई कैसे हो गए? इस तरह से वास्तव में जितने भी जीव हैं, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे में भी, वे सब हमारे भाई हैं। और इस कारण से उनसे प्रेम करना ही चाहिए, दुख में उनकी सहायता करना, उनसे प्रेम करना, वह भगवान की सेवा मानी गई है। और तत्वतः जो सेवा की जाती है भगवान की, तो वह जीवों की ही सेवा की जाती है। सेवा इस माने में कि भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है कि उनकी कोई सेवा करे, उनको क्या दुख दरिद्रता है, क्या कोई करेगा उनकी सेवा करके। अब सिद्धांत समझने का प्रयास कीजिए, भगवान की सेवा यही है कि जीवों को सुखी किया जाए। ये भागवत की बात मैं बोल रहा हूं, एक बार नहीं कई बार बात आई, भगवान का स्वयं उपदेश। जीवों को यदि बताया जाए कि तुम कृष्ण से प्रेम करो, कृष्ण तुम्हारे बंधु हैं, ये हैं, और उनको आराम दिया जाए, उनको भोजन दिया जाए, उनको ये दिया जाए, इस दृष्टि से, तो इस पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और जीवों के दुख पर ध्यान न दे करके भगवान की मान लीजिए सेवा किया जाए, तो भगवान कभी कभी बहुत रंज होते हैं। भगवत में कहते हैं कि जो मेरे अर्चा विग्रह की आराधना करते हैं और जीवों में मुझको नहीं देखते हैं, जीवों का सम्मान नहीं करते हैं, वे भस्म में हवन करते हैं, भस्म निवज होती सब। ऐसे भगवान थोड़ा ऐसे बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई पिता अपने पुत्र पर रंज होकर के कहे ये तो नलायक ऐसे कर रहा है, इसको ऐसे करना चाहिए। तो अर्चा विग्रह की सेवा करने वाले भगवान को बहुत प्रिय है, उनको भगवान, उनको कनिष्ठ भक्त माना गया है शुरू में, लेकिन वे हैं भक्त, धीरे धीरे ऊंचे स्तर पर जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु पांच प्रकार की भक्ति में श्री विग्रह की आराधना को बहुत ऊंचा माने, वो तो है, लेकिन जब भगवान से प्रेम करना है तो भगवान कहाँ कहाँ है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। भगवान जैसे श्री विग्रह में है, उसी तरह से भगवान जीवों के भीतर भी है। और इस बात को भगवान बारंबार कहे हैं अपने मुख से, और उनके भक्त भी बारंबार कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सर्वं तिष्ठति, भगवान सबके हृदय में है, भगवान सबके हृदय में है, भगवान सबके हृदय में है। तो भगवान को देखने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए मनु महाराज यहाँ जप कर रहे कि ईशा आत्मा वास्यमिदं विश्वम, सारा विश्व आत्मा का आवास है। आवास से का अर्थ है आवास करने योग्य। भगवान ने विश्व सृष्टि क्या किया है, अपने रहने का स्थान बनाया। वैकुंठ तो उनका अपना घर है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। यह ध्रुव सिद्धांत, तो जीवों का सम्मान करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। परंतु हां, जीव को ही भगवान कह देना यह अपराध। जैसे कुछ लोग दलित नारायण कह देते हैं, ये जनता जनार्दन कह देते हैं। यह भी बात इसीलिए कही गई कि लोग जब समझेंगे कि भाई ये भगवान है तब आदर करेंगे। जैसे महात्मा गांधी जी ने हमारे देश में छोटे छोटे लोगों को, दीनहीन लोगों को उन्होंने संज्ञा दे दिया हरिजन, हरि का जन। हरि के तो सभी हैं, चाहे उच्च व्यक्ति हो या नीच हो, कोई भी हो, भगवान के सब हैं। लेकिन एक बहुत ही शुद्ध भावना से उन्होंने उन लोगों को हरिजन शब्द दिया, हरि के जन, भगवान के जन है, इसलिए लोग आदर करेंगे, सेवा शुश्रूषा करेंगे, क्योंकि हरि और हरि के जन ये दो ही पूज्य हैं इस संसार में, इसे सिद्ध हो रहा है। यह बहुत ऊंची बात कही जा रही है कि भगवान इस जगत के कण कण में है, आत्मा वास्यमिदं विश्वम, और जत किंचित जगत्याम जगत, इस लोक में जो भी जगत है, वस्तु है, जगत का अर्थ वस्तु, इस लोक में जगति, जगत में जो भी वस्तु है, सब जगह भगवान है, सब कुछ भगवान की शक्ति है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजे था तेन ईश्वरेण त्यक्तम दत्तम, भुंजित है, जो भगवान ने दिया है किसी को, तेन त्यक्ते न, त्यक्त का तो दत्त, भगवान ने जो जिसको दिया है, जो कोटा है कर्म के अनुसार, उसी से भुंजित है, उसी से भोगों को भोगना चाहिए संतोष करके। भगवान ने जो दिया है उसमें संतोष करके भोगना चाहिए। जो भी वस्तु है संसार में उन्होंने जो दिया है, बहुत वस्तुएं हैं उसमें से जो वस्तु उन्होंने दिया उसी को भोगना चाहिए। अथवा तेन त्यक्तेन का अर्थ है कि तेन हेतुना, ईश्वर के लिए त्यागी हुई वस्तु को भोगना चाहिए। ईश्वर के लिए त्यागी हुई वस्तु का अर्थ है कि भगवान को जो वस्तु अर्पण की गई है उसी को भोगना चाहिए, जीवन निर्वाह उसी से करना चाहिए। जो वस्त्र है, भोजन है, घर है, जो कुछ भी वस्तु है सब भगवान की है, इसलिए भगवान को दे करके ही भोगना चाहिए। डायरेक्ट न स्वार्थम, अपने लिए नहीं भोगना चाहिए, पहले भगवान को अर्पण करके तब भोगना चाहिए। इसके दो अर्थ, तेन त्यक्तेन भुंजिता। मां गृध कस्यचित् धनम्, मां गृध, गृधु अभिकांक्षायां, गृध का अर्थ होता है अभिकांक्षा, बहुत बहुत आकांक्षा मत करो, यह उपदेश है। इस संसार में जितना भगवान ने दिया है उसमें संतोष करो, बहुत आकांक्षा मत करो। मां गृध कस्यचित् धनम्, किसी के धन की अभिकांक्षा मत करो। हम लोग देखते हैं संसार में धन बिखरा हुआ है, किसी किसी के पास बहुत है, किसी के पास कम है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि दूसरे के धन को देख करके वह गिद्ध ना बने, अभिकांक्षा ना करे। और अभिकांक्षा करके वो करेगा क्या, केवल आकांक्षा जलाएगी। आकांक्षा से ही वो वस्तु मिल नहीं जाती है। कोई बहुत इच्छा करे, इच्छा करे, इच्छा करे, तो इच्छा से ही तो वस्तु मिलती नहीं है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो बहुत बहुत की इच्छा होती है मनुष्य को, अभिकांक्षा कहते हैं। जीव अभिकांक्षा में अनेक इच्छाएं हैं, लेकिन ये इच्छाएं उसके जीवन के लक्ष्य को विफल कर देती है। यदि मान लीजिए संसार का मालिक बनने की इच्छा हो किसी को और सारी वस्तु भोगने का मिल भी जाए, तो उसे उसको लाभ क्या होगा, जीव के तो वास्तविक भोग नहीं है। इसका एक अर्थ है कि मां गृध कस्यचित् धनम्, किसी के धन की अभिकांक्षा मत। अथवा कस्यचित् धनम्, कस्य अन्यस्य धनम् अस्ति यतो धनकांक्षा क्रियते इत्यर्थ, किसका धन है पहले ये विचार कर लो, क्यों धन की कामना कर रहे हो, किसका धन है इस संसार में, सब भगवान का है। तो यदि धन की आकांक्षा हो रही है तो इसका मतलब भगवान का हड़पना चाहते हो, भगवान का लेना चाहते हो, और कोई अधिकारी नहीं है इस। तो भगवान ने ये सब वस्तुएं बनाए, धन का अर्थ है यहाँ खाना पीना मकान कार रोड जो कुछ भी है, सब कुछ धन के अंदर, ये सब कुछ भगवान का है। और भगवान ने जीवों के उपकार के लिए, जीवों के भोग के लिए इसको बनाया है, तो उचित यही है कि इन सारी वस्तुओं को भगवान को अर्पण करके और तब उनकी आज्ञा से इसको भोगा जाए। संतोष सीखना चाहिए, संतोष बहुत बड़ा गुण है वास्तव में। जो व्यक्ति प्राप्त धन में संतुष्ट रहना सीख गया तो वह बहुत जल्दी सिद्धि पाता है, उसका मन बहुत सुखी रहता है। बहुत अप्राप्त धन की आकांक्षा नहीं है और प्राप्त धन में संतोष है, जैसे स्त्री में संतोष है, बच्चे में संतोष है, धन में संतोष है, जो कुछ भी मिला है भगवान का वरदान मान करके उसको भोगना चाहिए। भगवान का भजन करते हुए, भगवान को अर्पण करते हुए, यह इस श्लोक का भाव है। तेन त्यक्तेन भुंजितः मां गृध कस्यचित् धनम्। अब यहाँ प्रश्न किया जाता है, जैसे पहले कहा गया कि नायम तम वेद वेद सब, भगवान इस जगत के सभी जीवों के विषय में जानते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। एक प्रश्न होगा कि भगवान इतना ज्ञान रखते हैं, कभी कभी तो भगवान का ज्ञान भी नष्ट होता होगा, चाहे उब जाते होंगे, एक जीवों का पालन कर रहे हैं, किसी दिन ऐसा आएगा कि भगवान भी कहेंगे कि अब हम उब गए, हम नहीं पालन करेंगे, ऐसा हो सकता है। एक प्रश्न बनता है, किसी भी आदमी में एक सीमित सामर्थ्य है, लेकिन भगवान में तो सीमा नहीं है। आपने देखा होगा कभी कभी परिवार में कोई घर का मालिक अपनी ही पत्नी पर, अपने बच्चों पर भी क्षुब्ध हो जाता है। कभी कभी ऐसा कहने लगता है, बेकार में जान में पड़ा हुआ हूं। तो ये तो न रहते बनता है न छोड़ते बनता है, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन भगवान है कि जीवन में कभी ऐसी बात नहीं आई कि वे जीवों से उब जाए। इनका घर चलाना, भोजन जुटाना, कपड़ा चलाना, ये सब अनादि काल से सृष्टि कर रहे हैं। भोजन भी भगवान को ही देना है, शरीर भगवान को देना है, सब कुछ वही करते हैं। और जीव भगवान को नहीं जानता है, भगवान का भजन नहीं करता है। ये स्वाभाविक प्रश्न बनता है कि भगवान भी कभी उब करके छोड़ देंगे सब सृष्टि करना चलाना, सब अपना अपना चलाओ, क्या ऐसा करेंगे? भगवान मान लीजिए सूर्य को फ्यूज करके नष्ट करके कहे अपना प्रकाश बनाओ, हम हवा खींच रहे हैं, हवा बंद कर रहे हैं सारे, तुम अपना हवा बनाओ और सांस लो, पृथ्वी खाली करो, हमारा सब अब अपने से पृथ्वी बना लो, तो जीव क्या करेंगे? केवल हाहाकार के अलावा और क्या कर सकते हैं? क्या कोई कहेगा कि सरकार थोड़ा सा अवसर दीजिए, एक दो साल रहने दीजिए, इसके बाद हम उपाय कर लेंगे, हम उपाय करेंगे, हम आकाश में जाएंगे? तो भगवान कहे नहीं, आकाश भी मेरा है, हम वायु मग्निम सलिलम महिम चम, आकाश मेरा है, समुद्र मेरा है, सब धरती खाली करो, सब अपना जुटाओ, क्या करेगा जो? तो इसी का उत्तर देते हैं कि यम पश्यति न पश्यंतम चक्षुर जस्य न ऋष्यति। भगवान सबके बारे में जानते हैं, सारा ज्ञान रखते हैं, लेकिन भगवान को कोई नहीं जानता है। और चक्षुर जस्य न ऋष्यति, भगवान का ज्ञान, भगवान की आंख कभी नष्ट नहीं होती। ऋष्यति का अर्थ है नश्यति। भगवान में जो करुणा है जीवों के प्रति, और भगवान का जो दिव्य ज्ञान है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। जैसे सूरज भगवान प्रकाश दे रहे हैं सारे जगत में, लेकिन यहाँ पर सूरज के प्रति भाव हो या न हो, या वस्तुएं नष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो सूरज के प्रकाश में तो कोई क्षति नहीं होगी। यहाँ की व्यवस्था से सूरज के प्रकाश में घटती बढ़ोतरी कुछ नहीं होती है। सूरज का जो स्वभाव है वो है, इसीलिए कृष्ण की उपमा सूरज से दी जाती है बारंबार। भगवान का जो स्वभाव है वो है, यहां जीवों के व्यवहार से भगवान का स्वभाव बदलने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए यहां पृथ्वी पर कुछ लोग सूर्य की पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ सूर्योदय होता रहता है फिर भी सोए रहते हैं, या सूर्य की तरफ खड़े होकर पेशाब भी करते हैं, कुछ भी करें, लेकिन सूर्य के प्रकाश में तो उससे कोई कमी आने वाली नहीं है। तो जीव चाहे जितनी भी शैतानी करें, भगवान को माने न माने, भगवान के करुणा में, भगवान के स्वभाव में, ज्ञान में कोई कभी क्षति नहीं होती, ज्यों के त्यों रहते। मनुष्यों का ऐसा हिसाब है या देवताओं का ऐसा है कि व्यवहार के अनुसार उनका सब बदलता रहता है। कभी बहुत कृपा करेंगे और बहुत कृपा करेंगे, और कभी कहेंगे देखो मेरा मिजाज गर्म हो रहा है, भाई ठंडा रहिए, क्यों गर्म हो रहा है? स्थिति बदलती रहती है ना। यहाँ ऑफिस बंद हो जाते हैं, रात विश्राम होता है, होलीडे होता है, सब होता है, शिक्षक स्कूल बंद करके चले जाते हैं, लेकिन भगवान जो सृष्टि किए हैं, एक दिन एक मिनट के लिए भी भगवान दृष्टि हटा नहीं सकते हैं। चक्षुर जस नविष्यति, कहीं ऐसा नहीं है कि भगवान भी थोड़ा सोचे कि अब विश्राम करें, छुट्टी ले लें, देखें कैसे चलता है। भगवान अगर मुख मोड़ ले एक दिन तो सारा जगत उसी समय नष्ट हो जाए। इतना भी तत्पर है चलाने के लिए, निरंतर निरंतर सब। मनुष्यों की क्या स्थिति है, 24 घंटे में 24 बार स्वभाव बदल जाता है। रात आते ही सो हो जाता है मरे की तरह, कोई न काम धंधा करना न कोई चिंता, अपना भी या स्मरण नहीं रहता है, सो हो जाता है। दूसरे का स्मरण क्या करेगा। जो व्यक्ति सो गया तो परिवार को भूल ही गया, पत्नी को भूल गया, बच्चों को भूल गया, काम धंधा सब भूल गया। नींद अभिभूत कर लेती है, क्रोध दबा लेता है, काम दबा लेता है, लोभ दबा लेता है, स्थिति बदलती रहती है। लेकिन भगवान एक रस रहते हैं, यह है उनका अपार वैभव। चक्षुर जस नरिष्यति, चक्षुर से तत्पर्य चित्त शक्ति स्वभाव। भगवान की जो चित्त शक्ति है, स्वभाव है, वो घटती नहीं। सूर्य का प्रकाश है तो है, जैसे जाड़े के दिन में लगता है कि सूर्य का प्रकाश कम हो गया, लेकिन सूर्य का प्रकाश कम नहीं हुआ है, पृथ्वी पर प्रकाश का प्रतिफलन कम होता है, कम आ रहा है। अभी समय बादल छाया है तो कोई कहे कि सूर्य का प्रकाश मंद हो गया, सूर्य का प्रकाश मंद नहीं है, बादलों ने सूर्य के प्रकाश को रोक दिया है यहां तक आने में, प्रकाश की कमी नहीं। तो भगवान की करुणा में, भगवान के ज्ञान में, धन में, स्वर्ग में कभी भी कोई कमी होने वाली नहीं, भगवान सदा एक रस। तम भूत निलयम देवम सुपर्णम उपधावत, इसमें भी उपदेश है, ऐसे भूत निलयम देवम सुपर्णम को उपधावत, शरण लो, भजद्वम, भजन करो। ऐसे भगवान को देव कहा गया, देव का अर्थ है आराध्य, भगवान ही हमारे समस्त क्रियाओं के द्वारा आराध्य हैं, पूज्य हैं। और भूत निलयम, भूतानि निलयम जस्य, सभी जीव भगवान के निलय हैं। निलय का भी अर्थ है आवास, घर, भूत निलय, सभी जीवों के हृदय में भगवान रहते हैं, तो जीव ही भगवान के घर है। तो पूछना हो भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, प्रकट जीव के हृदय में रहते हैं, और कहां रहते हैं, भूत निलय। निलय का अर्थ होता है जहां व्यक्ति नितरान लय को प्राप्त हो उसको निलय कहते हैं। लय का अर्थ होता है छिप जाना, रहना। तो अपने घर में आदमी समा जाता है, मान लीजिए दरवाजा खोल करके घर में आवे तो बाहर से देखने वाला आदमी कहेगा निलय हो गया, प्रलय हो गया, छिप गया। तो घर को निलय कहा गया। और निलय का अर्थ है कि जहां आदमी आराम से पड़ा रहे, अपने घर में सोए खाए पिए, तो उसको निलय कहा गया। बाहर से आकर अपने घर में आदमी निलीन हो जाता है, इसलिए घर को निलय कहा। भगवान का निलय कहाँ है, भगवान का निलय है भूत, भूत माने जीव, सभी जीवों के हृदय में भगवान रहते हैं। तो ऐसा, और परंतु हृदय में रहते हुए भी सुपर्णम शोभन पत्नम असंगम उपधावत, भगवान असंग हैं, संसार के सुख दुख से वे प्रभावित नहीं होते, असंग हैं, जैसे हैं वैसे हैं। नहीं तो यह कहा जाए कि भगवान सभी जीवों के हृदय में है, तो जीव भी तो हृदय में रह रहा है, लेकिन जीव असंग नहीं है। जैसे मैं अभी वर्णन किया, जीव सुख दुख का अनुभव करता है, संसार के दुखों का बार बार अनुभव करता है, लेकिन भगवान निर्विकार है, सबके हृदय में रहते हुए भी वे असंग है। इसको सुपर्ण कहा गया। सुपर्ण का अर्थ होता है पक्षी, या सुपर्ण का अर्थ होता है जिसके शोभन पंख हैं। जिस पक्षी के सुंदर पंख होते हैं, वह एक बार पंख हमारा उड़ गया, चलो उड़ जा रहे पंछी कि अभी देश हुआ अभी का। तो सुपर्ण का मतलब है अनाशक्त, इस वृक्ष पर बैठा है, पंख मारा उड़ गया, और जिस पक्षी के पंख ही टूट गए हैं तो उसकी कितनी दुर्दशा होगी, वो भाग नहीं सकता है। तो जीव जो है वो सुपर्ण है, वो भी सुपर्ण है पक्षी के माने में, द्वा सुपर्ण सोया सखाया, जीव भी उड़ जाता है शरीर छोड़ करके। हमारे यहां गाते हैं लोग कि का करब राई राई पाई पाई जोड़ के उड़ जाई है सुगना पिंजड़वा के छोड़ के, क्या करोगे राई राई पाई पाई जोड़ करके, एक दिन ये सुगा उड़ जाएगा शरीर छोड़कर, पिंजड़ा को छोड़कर उड़ जाएगा सब उड़ जाएगा, सब छोड़ करके उड़ जाएगा, घर रहता है ऑफिस रहता है सारा रहेगा, जीव चला जाएगा। जबकि घर के दूसरे लोग चाहते हैं कि ये ना जाए, लेकिन वो तो चला ही जाता है। परंतु जब तक है तब तक बड़ा वो दुख में रहता है, आसक्त रहता है, सहन जाता है, जहां भी जाता है वहीं मान लेता है ये मेरा है मेरा है मेरा है। लेकिन भगवान वास्तविक सुपर्ण है, सबके भीतर रहते हैं लेकिन कहीं भी प्रभावित नहीं होते। भगवान आनंद घन है, आनंदमय रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई दुखी जीव है उसके हृदय में रहकर भगवान भी छाती पीटते रहते हैं, हाय हाय हाय। एक व्यक्ति एक बार हमसे कहा कि यदि भगवान हम लोगों के पिता हैं, तो जब हम लोग दुखी हैं तो वे क्यों सुख से रहते हैं। मैं बताया कि तुम्हें दुखी हो जाएंगे इसी से तुमको सुख मिल जाएगा, जो सारी दुनिया को सुख देने वाले हैं वही अगर दुख में पड़ जाएंगे तब कैसे सुख पा सकोगे। भगवान वास्तविक पिता हैं और वास्तव में आनंदमय हैं। भगवान कभी मनोरथ भी करें कि मैं दुखी हो जाऊं तो नहीं हो सकते हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है, दुखी हो ही नहीं सकते, चूंकि वो आनंद से ही बने हैं तो दुखी कैसे हो सकते हैं। एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि गंगा जी यदि चाहे कि मुझमें पाप भर जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि गंगा जी का तो नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाए। तो गंगा जी लाख मनोरथ करें कि हम में पाप आ जाए लेकिन आ नहीं सकता है, उनमें स्नान करने से दूसरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूरज भगवान मनोरथ भी करें कि रात कैसी होती है जरा मैं उसे भेंट करूं, तो जहां जाएंगे वो करोड़ों योजन में पहले ही दिन हो जाएगा, रात से भेंट कहां हो सकती है। सरस्वती जी चाहें कि हम जरा मूर्खता देवी से भेंट करें तो सरस्वती जी से भेंट नहीं हो सकती, क्योंकि सरस्वती जी विद्वता की देवी है। और लक्ष्मी जी चाहें कि दरिद्रता से सख्य करें, दरिद्रता देवी से भेंट करें तो हो ही नहीं सकती है, लक्ष्मी जी समस्त धन के अधिष्ठात्री। वैसे ही भगवान यदि कभी चाहें कि मैं दुखी हो जाऊं तो हो ही नहीं सकती, वो तो आनंदमय है। भगवान चाहे भी कि दुखी हो जाए तो नहीं हो सकता, ये उनका स्वभाव, उनको सुपर्ण कहा गया है, आनंदमय है, ज्ञानमय है। उनका ज्ञान, उनका आनंद, उनका ऐश्वर्य कभी तिरोहित नहीं होता है। ऐसे प्रभु को उपधावत, उपधावन करो, उनकी खुशामदी करो, उनकी शरण में जाओ, उनका भजन करो, मनु महाराज का उपदेश। कुछ भक्तों की इच्छा थी कि 10-15 मिनट के लिए विश्राम दिया जाए, ठीक रहेगा, तो ठीक है फिर 6 बजे बैठेंगे, तो आप लोग तब तक पैर सीधा कर लीजिए इधर उधर घूम कर। हरे कृष्ण।
नजस्याद्यन्तौ मध्यं च स्वः परो नान्तरं बहिः विश्वस्यामुनि यज्ञस्मात् विश्वं च तद्रितं महात्। तो भगवान के स्वरूप की नित्यता बताते हुए मनु महाराज कहते हैं, जस्य आदि अंतौ न। भगवान ने के स्वरूप का, भगवान का कोई प्रारंभ नहीं है और न तो अंत है। जस्य आदि अंतौ न, और इसलिए मध्यम न। जब आदि और अंत है ही नहीं तो मध्य क्या होगा? और संसार में किसी की सत्ता देखिए तो उसका एक प्रारंभ है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति का जन्मदिन है। डेट ऑफ बर्थ, और चले जाने के बाद दूसरे लोग लिखेंगे एक्सपायरी डेट, वो दूसरे लोग लिखेंगे। और यह डेट भी हम लोग अपने से नहीं जानते हैं, दूसरे लोग बताते हैं कि इस दिन जन्म हुआ था, उस दिन तो याद ही नहीं रहा। तो एक शुरुआत है जिसको आदि कहते हैं संस्कृत में, और एक दिन अंत हो जाता है। तो शुरू में कोई न तो धन रहता है, न शिक्षा रहती है, न बहुत सुंदर शरीर रहता है, कीड़े जैसा छोटा सा शरीर रहता है, गर्भ से जन्म लेते। बाद में और क्वालिफिकेशन अर्जन करते हैं, विद्या पढ़ते हैं, धन कमाते हैं, और एक दिन इन सारे क्वालिफिकेशनों का, सारी विशेषताओं का अंत होता है, डेड लाइन, तो बस यहीं तक। उसके पहले ही घटना चालू हो जाता है, लेकिन एक दिन फाइनल एंड होता है, अंत किसी का भी। लेकिन जस्य आदि अंतौ न, भगवान का आदि अंत नहीं। हम लोगों का मन है, हम लोगों की बुद्धि इतने काल द्वारा परिच्छिन्न है कि काल से अतीत की बात हम सोच ही नहीं सकते हैं। जरूर मन ये व्यायाम करेगा कि नहीं, कभी तो चालू हुआ होगा, कभी तो चालू हुआ होगा, क्योंकि चालू होते हुए देखते हैं इस संसार में और अंत होते हुए भी देखते हैं। मन पर यही धारणा छा गई है, भगवान का प्रारंभ नहीं है और भगवान का कभी निधन नहीं है, अंत नहीं है, और इसलिए मध्यम न, मध्य नहीं। जब आदि और अंत का पता रहेगा तब तो आदमी कहेगा मध्य यहां हुआ है। जब आदि अंत नहीं है तो मध्य भी नहीं है। भगवान का यह वर्णन भागवत में बारंबार वर्णन कहा गया है इस तरह से, भगवान का आदि नहीं है, अंत नहीं है, मध्य नहीं है। न स्व न पर, भगवान का कोई आत्मीय नहीं है, जिसको भगवान कहें कि यह मेरा है, यह मेरी वस्तु है, और किसी को कहें कि यह मेरी नहीं है। कौन ऐसी वस्तु है जो भगवान की नहीं है? तो जब सब कुछ भगवान का है ही, तो भगवान क्या कहेंगे कि ये मेरी है? मेरी कहते ही तब मतलब तेरी भी आ जाएगा। तो इसलिए भगवान के लिए यह मेरा है और यह पर है कोई नहीं। इस संसार में तो प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ स्व है और कुछ पर है। हमारा कार का नंबर है, हमारा टेलीफोन का नंबर है, हमारा घर है, हमारा है, हमारा कुछ लिखा हुआ है रजिस्टर में, रजिस्ट्रेशन हुआ है सब निश्चित। लेकिन भगवान के लिए जब मान लीजिए पूछा जाए कि आपका क्या क्या है, तो क्या कहेंगे कि मेरा नहीं है? इसीलिए भगवान में ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि यह उनका अपना है या यहाँ पर आया है। न स्व न पर, यह तो मनुष्यों की, जीवों की धारणाएं हैं। तो इस विशाल प्रकृति के राज में जो भगवान की सृष्टि है, उसी में से हम लोग बांट लिए हैं, मेरा है तुम्हारा है, मेरा है तुम्हारा है, और वो करके फिर छोड़कर चले जाएंगे। उसी घर को जिसको हम कहते हैं मेरा है, मेरा है, बेच दीजिए, तो फिर दूसरे लोग कहने लगेंगे मेरा है, मेरा है, और जब बेच देंगे तो कहेंगे परा है, ये दूसरे का होता है। यहां तो बहुत शिफ्ट करते रहते हैं लोग, बदलते रहते हैं।
शहर का शहर बदल जाए, शहर से बदल जाते हैं, एक शहर में भी घर बदलते रहते हैं।
तो जिस देह में हम आते हैं तो कहते हैं इतने हमारे आदमी हैं, ये हैं, ये हैं, इतने हैं, और वो हमारे नहीं हैं, यही करते रहते हैं। भगवान की ऐसी निगाह नहीं, उनके सभी अपने, कोई पराया नहीं है, असली भाव ये। और नांतरम न बही, भगवान के भीतर कुछ नहीं है और न बाहर। हम लोगों के शरीर में भीतर भी बहुत कुछ है, हड्डी है, आते हैं, और भी है, और बाहर तो सब कुछ भरा पड़ा है। बाहर सारा संसार है, बाहर ही बसते हैं, लेकिन भगवान है, इतने महान है कि उनके बाहर कुछ नहीं है। तब पूछा जाए कि तब भीतर है? नहीं, भीतर भी कुछ नहीं, कि उनको पूर्ण स्पिरिट है, पूर्ण चिदघन है। तो चिदघन वस्तु में जड़ वस्तुएं कैसे रह सकती? लेकिन फिर भी सारा जगत उनके भीतर है, एक अद्भुत बात है। भगवान के भीतर कुछ नहीं है, भगवान के भीतर तो भगवान है बस, चिन्मय सत्ता है, और बाहर उनके कुछ है नहीं, क्योंकि वो इतना महान है, बड़ा है, कि उनके भीतर ही सब कुछ हो सकता है। उनके पकड़ से, उनके रेंज से बाहर कुछ नहीं। हम लोगों के तो बाहर, उसी बाहर ही सारा संसार है, अपने पकड़ में कितना है। सारा संसार तो बाहर ही है, लेकिन भगवान से बाहर कुछ नहीं है, उनके भीतर कुछ नहीं है। विश्वस्य अमुनि जस्मात, जस्मात का अर्थ है जिस ईश्वर से विश्व के ये सब होते हैं। विश्वस्य अमुनि, अमुनि का अर्थ है आदि, अंत, मध्य, स्व, पर, अंत, वही, ये सब भगवान के द्वारा होते हैं, भगवान की शक्ति से। विश्व का प्रारंभ, विश्व का विनाश, विश्व का मध्य, विश्व का भीतर बाहर, सब ये भगवान से होते हैं। और जद विश्व, भगवान विश्व रूप है, यह विश्व भी भगवान का ही एक रूप है, अर्थात भगवान की शक्ति का परिणाम है। परंतु भगवान है जगत से पूर्ण विलक्षण है, ये रितम शब्द से यह बात कही जा रही है। भगवान को एक बार कहा जा रहा है कि विश्वम च यत जद रूपम इत्यर्थ, यह विश्व जत, यह विश्व भी भगवान का रूप है, भगवान विश्व के रूप में है। विश्व की प्रत्येक वस्तु के साथ इतना गहरा संबंध है भगवान का, कि कहा जा सकता है कि विश्व भगवान का रूप है, भगवान से बाहर नहीं है, उनकी शक्ति का परिणाम है। तब क्या भगवान भी जगत के रूप में विकारी हो गए? नहीं नहीं, तद रीतम, भगवान अव्यभिचारी रूप से सदा एक रस रहते हैं। जगत में परिवर्तन होता है, जगत का विनाश होता है, जगत की सृष्टि होती है, जगत में मध्य अवधि होती है, जगत में सब कुछ विघटन होता है, लेकिन भगवान पूर्ण इससे परे है, क्योंकि रीतम सत्य, भगवान सत्य है। जगत के रूप में भगवान को कह दिया जाता है, इसलिए भगवान में विकारित्व की संभावना नहीं करनी चाहिए। अरे महत, महत का अर्थ पूर्ण, परिपूर्णम ब्रह्म, महत शब्द और ब्रह्म शब्द का एक ही अर्थ होता है संस्कृत में। ब्रह्म का अर्थ है बृहत, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ब्रह्म शब्द बृहत कहे, चैतन्य कहते हैं बृहत, जो बहुत बड़ा है, और महत का अर्थ भी जो बहुत बड़ा है। बड़ा का क्या अर्थ हुआ? पूर्णम,